एम गुजराती कौन सा 126 शुरू करेंगे। आज बुधवार है ना, बुधवार तारीख 23 नवंबर 2011 लेक्चर नंबर 2। ओम नमः सिद्धेय, ओम नमः सिद्धेय, ओम नमः सिद्धेय, ओम शुद्धात्मने नमो अरिहंताम, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्यां, नमो वर्षायां, नमो लोये सर्वदां, चन्द्रस्वजन्देशे तेन निहानेन च निपालं मे नादं जिनेन नियदम् जम्मं वा अहवमरणं वा संतस्वतं निदेशे तेन विहानेन तं निपालं मे कोशकदिवारेदुम् इन्दो वा सहजिनीन्दो वा एवं जो निश्चयदो जानदि दौवाणि सर्वपश्चाये शोषदिठि सुस्थो जोषं सदिशोः कुदिति। जिनेन्द्र भगवान ने बताए हुए जो वस्तु स्वरूप के सिद्धांत है उनमें से कारण कार्य की जो व्यवस्था है जो प्रत्येक द्रव्य में है उस संबंधी अनेक जो शक्तियां हैं उनकी चर्चा करते हुए अभी हम यहाँ सुबह हमने कारण परमात्मा और कार्य परमात्मा की बात देखी थी। कार्य परमात्मा ने परमात्मा दशा परमात्मा रूप जो कार्य हुआ है उसका कारण क्या है तो कारण परमात्मा। तो कार्य पर्याय में हुआ है उसका कारण द्रव्य स्वयं है। तो जो द्रव्य का त्रिकाली जो स्वभाव है जो हम कहेंगे परम पारिणामिक भाव है वही उसका कारण परमात्मा है यानी परमात्मा दशा का कारण। तो त्रिकाल कारण कहेंगे तो उसको हम त्रिकाल कारण परमात्मा कहेंगे और उस समय की जो पर्याय की योग्यता है सच्चा हम जिसको कहेंगे उसी समय जो विद्यमान है उसको भी हम कारण परमात्मा कहेंगे। उसके बाद कारण नियम और कार्य नियम की बात अपनी चल रही थी। तो नियम यानी नियम से करने योग्य कार्य। तो नियम से करने लायक क्या है तो कहते हैं रत्नत्रय की प्राप्ति निश्चय रत्नत्रय। तो निश्चय रत्नत्रय वो सारभूत है इसलिए उसको नियम सार कह गया। तो ये नियम सार ये हम यहाँ पढ़ेंगे। देखो 126 पर हिंदी में नीचे से दूसरा पैराग्राफ। जो नियम रूप से करने योग्य है वह नियम है अर्थात दर्शन ज्ञान चारित्र यही नियम है और उसको सम्यक शब्द लगाया। क्यों? क्योंकि विपरीतता का खंडन करना है इसलिए सार शब्द उसके साथ लगा दिया। हाँ वो पढ़ा था हमने उसको रिपीट करके हम आगे बढ़े। देखो दर्शन ज्ञान चारित्र यह नियम है ये करने रोग कार्य है और सार शब्द लगाने से क्या वो सम्यक है ये नक्की हो जाता है। तो नियम किसको कहा? रत्नत्रय को ही नियम कहा। व्यवहार रत्नत्रय यानी राग भाव रत्नत्रय नहीं है परंतु उसका सहचर होने से जहाँ निश्चय रत्नत्रय है वहाँ साथ में जो शुभ भाव है वो सहचारी है यानी उसके साथ साथ होता है इसलिए उसको आरोप करके कह दे ये भी रत्नत्रय है तो उसको उपचार से रत्नत्रय कहते हैं। तो उसे कोई करने योग्य यो न मान ले क्या कहे ये जो व्यवहार रत्नत्रय होता है निश्चय के साथ परंतु अगर मान्यता में यही करने योग्य कोई मानेगा तो ये उसकी भूल होगी मान्यता की इसलिए सार शब्द जोड़ दिया जो निश्चय रत्नत्रय का सूचक है। शुद्ध रत्नत्रय रूप नियम मोक्ष मार्ग है यानी नियम हमने की कहा किसको कहा करने योग्य कार्य वो कौन सा है शुद्ध रत्नत्रय। वो मोक्ष मार्ग है, वह कार्य रूप है, यानी वो हुआ कार्य, तो उसको हम क्या कहेंगे, कार्य नियम सार, नियम यानी करने योग्य, सार यानी शुद्ध रत्नत्रय, वो पर्याय में प्राप्त हुआ इसलिए उसको कार्य नियम सार कह दिया। उसका कारण कौन है, तो कहते हैं कि जिसके आश्रय से ये कार्य प्रकट होता है उसको कारण कहेंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे, कारण नियम सार, वो भी अपने शुद्धात्मा को ही कहेंगे कारण नियम सार। तो आगे के पैराग्राफ में लिखा है, कार्य जीव द्रव्य में है तो उसका कारण भी जीव द्रव्य में है, यानी हमने क्या माना कि रत्नत्रय कहाँ होता है, तो कहते शरीर की क्रियाओं में, कि शरीर से क्या किया तो मुनि जैसे उनके आचरण पाल रहे हैं, तो यही नियम सार है क्या, यही रत्नत्रय है क्या, ऐसी किसी भोले जीवों की मान्यता होती है। तो कहते हैं कार्य अगर जीव में हो रहा है तो कारण भी जीव में ही है, शरीर में यानी शरीर की क्रियाओं में, यानी बाह्य व्रत उपवास आदि में नहीं है, कार्य स्वभाव पर्याय है तो उसका कारण भी स्वभाव रूप ही है। स्वभाव पर्याय हमने देखा, जैसे स्वभाव है वैसे पर्याय, पर्याय के दो भेद है, स्वभाव पर्याय विभाव पर्याय, यहाँ हम स्वभाव पर्याय की बात कर रहे हैं, क्योंकि निश्चय रत्नत्र है, मोक्ष मार्ग है, वो स्वभाव रूप पर्याय है, तो स्वभाव पर्याय है तो उसका कारण भी स्वभाव रूप ही होना चाहिए, विभाव उसका कारण नहीं हो सकता। विभाव क्या है, शुभ भाव, तो ये विभाव करके स्वभाव रूप पर्याय प्रकट हो ये बात नहीं हो सकती, वो साथ में है जरूर परंतु वो उसका स्वभाव का कारण नहीं है। अर्थात शुभ भाव व्रत उपवास आदि के परिणाम, परिणाम कहा, उपवास की क्रिया तो शरीर की हो गई और उपवास का परिणाम तो जीव का है, परंतु वो विभाव रूप है। तीन बातें हुई ना, एक स्वभाव रूप, एक विभाव रूप और एक परद्रव्य की पर्याय रूप, तो शरीर की क्रिया वो परद्रव्य में चली जाएगी परंतु वो उपवास करने के व्रत करने के जो शुभ भाव है वो जीव के विभाव हो गए और उसका जो निश्चय रत्नत्रय है वो उसका स्वभाव हो गया, पर्याय नहीं है सब। सहज परम पारिणामिक भाव में स्थित शुद्ध चेतना परिणाम कारण है, ये थोड़ी अटपटी भाषा है, इसको यहाँ समझाने का प्रयत्न किया। ये नियम सार आदि ग्रंथों में ऐसी बात आती है, क्या है, सहज परम पारिणामिक भाव, ये पारिणामिक भाव किसने उत्पन्न किया, सहज है वो है, वो उत्पन्न हुआ ही नहीं है कभी, उत्पन्न तो होती है पर्याय, और ये कैसे अनादि से है और वो जीव का अपना वो सहज है, किसी ने बनाया हुआ नहीं है। उसमें स्थित शुद्ध चेतना परिणाम कारण है, अर्थात परम पारिणामिक भाव में सदैव रहने वाली शुद्ध एक सदृश परिणति, देखो इसको परिणति में लिया, कैसे वैसी के वैसी के वैसी, एक तो विसदृश है उत्पाद रूप है और एक तो है उसको भी पर्याय रूप से गिना उन्होंने, ये थोड़ी अटपटी बात लगेगी आपको, क्योंकि अभी तक हमने एक उत्पाद है एक व्यय और एक ध्रुवता कहा, तो ये परिणाम पारिणामिक भाव रूप हर समय रहना 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 ऐसे उसको लिया, तो उसको यहाँ एक सदृश परिणति उसको कारण नियमसार कहते हैं, इसी का दूसरा नाम है कारण शुद्ध पर्याय। देखो अभी हम कार्य शुद्ध पर्याय और कारण शुद्ध पर्याय तक आज पहुंचे, कारण शुद्ध पर्याय किसको कहना, ये किसी पर्याय का नाम नहीं है। देखो कार्य शुद्ध पर्याय ने शुद्ध पर्याय रूप कार्य, उसका कारण कहाँ है, तो द्रव्य में ही विद्यमान है, तो उसको हम क्या कहेंगे, कारण शुद्ध पर्याय यानी शुद्ध पर्याय का कारण। अगर त्रिकाली लेना है तो त्रिकाली स्वभाव लेंगे और वर्तमान में क्षणिक लेना है तो उस समय की पर्याय की योग्यता रूप कारण लेंगे। कारण नियम का भान करने से उसके आश्रय से कार्य नियम रूप मोक्ष मार्ग प्रकट होता है। अब कारण नियम किसको कहेंगे हम, तो ये पारिणामिक भाव को, कारण रूप भाव है ना, तो उसका भान यानी उसको हम स्वीकार करेंगे, उसको निर्णय में ले लेंगे उसका आश्रय करेंगे, उसका अर्थ क्या है, उसी में एकाग्र हो जाएंगे तो कार्य नियम रूप मोक्ष मार्ग प्रकट होता है, यानी शुद्ध निश्चय रत्नत्रय प्रकट होता है। पर पदार्थ या भगवान अरहंत या गुरु के आश्रय से अथवा राग यानी व्यवहार रत्नत्रय के आश्रय से मोक्ष मार्ग प्रकट नहीं होता। ये कारण और कार्य ऐसे शब्द लगाने से ये बात नक्की होती है, कारण द्रव्य में ही विद्यमान है, शुद्ध पर्याय का कारण द्रव्य में ही विद्यमान है, किसी परद्रव्य से अरिहंत भगवान से गुरु से अन्य कहीं से भी वो प्राप्त होने वाला नहीं, हमारा कार्य हमारे स्वयं के कारण से ही उत्पन्न होगा, अन्य से नहीं होगा। यहाँ कारण शुद्ध पर्याय शब्द में पर्याय अर्थात परिणति शब्द आया है, यह कार्य रूप पर्याय की बात नहीं है। क्या कहा, शब्द क्या है, कारण शुद्ध पर्याय, हमें लगता है पर्याय शब्द है ना तो ये कुछ पर्याय की बात होगी, ऐसा नहीं है। अभी तक हमने कैसे देखा था, पहले कार्य परमात्मा और कारण परमात्मा, कार्य परमात्मा ने पर्याय परमात्मा दशा, परमात्मा रूप कार्य को कार्य परमात्मा कहा, उसका कारण कौन है, द्रव्य स्वयं त्रिकालियम कहेंगे, शुद्धात्मा कहेंगे, उसको क्या कहा, कारण परमात्मा। अब हम शुद्ध पर्याय कहेंगे, कार्य शुद्ध पर्याय रूप कार्य हुआ, उसका कारण क्या है, शुद्ध पर्याय का कारण क्या है, उसको कहेंगे कारण शुद्ध पर्याय। शुद्ध पर्याय इकट्ठा ले लो, ये कार्य हुआ है उसका कारण क्या है, कारण शुद्ध पर्याय। ये किसी पर्याय का नाम नहीं है, ये तो उपादान का नाम है। जैसे हमने कार्य परमात्मा और कारण परमात्मा कहा, अब परमात्मा के बदले वहाँ शुद्ध पर्याय लिख दो, कार्य शुद्ध पर्याय और कारण शुद्ध पर्याय,
कारण शुद्ध परमात्मा का दूसरा नाम ही है।
हाँ, तो कहते हैं ये कार्य रूप पर्याय की बात नहीं, कारण शुद्ध पर्याय क्या है, यह तो त्रिकाल एक सदृश परिणति है जो द्रव्य और गुण से अभेद रूप से हर समय में वर्तती है। ये थोड़ी अटपटी बात, क्योंकि हम द्रव्य गुण तो कायम है परंतु वो द्रव्य गुण का उस रूप से रहना 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 ऐसा जो एक सदृश परिणाम है, परिणाम कहा उसको, एक सदृश परिणति कही उसको, एक तो विसदृश परिणति और एक जैसी वही वैसी के वैसी वैसी चल रही अनादि से, तो उसको कहते हैं पारिणामिक भाव रूप है वो। हम जिस कार्य को पर्याय कहते आए हैं वह तो उत्पाद व्यय रूप है और उसको क्या कहते हैं, विसदृश, क्योंकि व्यय तो अभाव रूप कार्य है और उत्पाद तो नया उत्पन्न होने रूप कार्य है, वो कैसा है, विसदृश है, नया नया होता रहता है, जो नया हुआ है वो फिर व्यय हो जाता है और ये कैसा है, वैसे के वैसे चलता रहता है, हर पर्याय में वैसे के वैसे वो ध्रुव रूप परिणति परिणति में लिया हो इसको, ये थोड़ी अपेक्षा और सूक्ष्म है भाई, क्योंकि हम तो अभी तक इतना ही, ये पर्याय है ये द्रव्य है इतना ही सीखे ना, परंतु द्रव्य और गुण का वैसे के वैसा रहने रूप जो एक सदृश पना है उसकी परिणति है उसको यहाँ कारण शुद्ध पर्याय का नियम सार में ये बात बहुत बहुत ही सुंदर और विस्तार करता है, 10-12 गाथा के आसपास ये विषय है और सदृश है एक समान, विसदृश है अलग अलग भिन्न भिन्न असमान, पारिणामिक भाव, परंतु पारिणामिक भाव है तो उसकी भी वो सदृश परिणति ली वहाँ पर, द्रव्य गुण है पना उसका जो है, जैसे हम कहेंगे क्या जाना उसको हम गौण कर देंगे, मैं फॉर एग्जांपल बता रही हूँ, तो जानना 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 चल रहे है ना, भले है पर्याय वो पर जानन रूप पर्याय हर समय चल रही है, कितना जाना क्या जाना उसको आप गौण कर दो, तो ये पर्याय भी हर समय चल रही है ना, जानन रूप पर्याय हर समय चल रही है, ये तो एग्जाम्पल हुआ। ऐसे ही यहाँ तो द्रव्य गुण तो त्रिकाल कायम रहने वाले हैं, परंतु वो कायम है पना जो है, जैसे समुद्र में है तो समुद्र में तो जो उसकी लहर उत्पन्न होती है परंतु उसकी एक सतह जो सदा बनी रहती है, वैसे ही कारण शुद्ध पर्याय कहने में आती है और उसको पारिणामिक भाव कहने में आया। पारिणामिक भाव त्रिकाल है और उसका एक सदृशी है पना जो कायम बना है उसको यहाँ कारण शुद्ध पर्याय में गिना है। परिणति कहकर वो ध्रुव रूप ले लिए। देखो फिर पढ़ती हूँ मैं इसको कि यह तो त्रिकाल एक सदृश परिणति है जो द्रव्य और गुण से अभेद रूप से हर समय वर्तती है। अभेद रूप ले लेना क्योंकि विसदृश पना है उसको हमने अलग निकाला और ये सदृश परिणति चल रही है हर समय। यह पारिणामिक भाव स्वरूप है। हम जिस कार्य को पर्याय कहते आए हैं वह तो उत्पाद व्यय रूप है, विसदृश है। अनादि से जीव विभाव परिणाम करते आया है, यह उसका विभाव रूप कार्य पर पदार्थों या कर्मों के कारण नहीं है परंतु उसके स्वयं के अपराध से होता आया है। इन्हें स्वभाव रूप कार्य तो पर से नहीं होता परंतु विभाव रूप कार्य तो होता है ना। क्रोधमान हो रहे हैं तो पैसा देख के तो लोग हो रहा है कि नहीं हो रहा तो कहते नहीं वो उसका स्वयं का अपराध है यानी अशुद्ध उपादान से हो रहा है। इसके प्रत्येक पर्याय में शुद्ध चैतन्य परिणति रूप कारण विद्यमान होने पर भी क्या कहते हैं, प्रत्येक पर्याय में शुद्ध चैतन्य परिणति चल रही है कि नहीं, ज्ञान दर्शन आदि जो शुद्ध चैतन्य का जो सारा है उसकी भी पर्याय चल रही है कि नहीं। शुद्ध चैतन्य परिणति है नहीं, जानन 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 उसका चल रहा है, आत्मा है उसका पारिणामिक भाव है तो उसकी भी परिणति चैतन्य 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 चल रहा है। फिर भी ये शुद्ध परिणति रूप कारण विद्यमान होने पर भी उसका भान उसका लक्ष्य न करने से उसका आश्रय नहीं लेने से विभाव पर्याय होती रही और वो विभाव को अपना स्वरूप मानता रहा। यानी हर समय हम है कि नहीं है, हम स्वयं विद्यमान है और यहाँ जानन जानन कार्य भी चल रहा है परंतु कभी उसका लक्ष्य नहीं किया उसका भान नहीं किया। अरे जानने वाले तो हम स्वयं है परंतु लक्ष्य किसका किया, पर पदार्थों का। और फिर उसमें ये अच्छा ये बुरा कल्पना करते हैं और फिर राग द्वेष की उत्पत्ति हुई यानी विभाव परिणति चलती रही। चैतन्य परिणति नहीं थी क्या वहाँ पर, थी परंतु वो राग के साथ मिलकर ये राग को तो एक्सेप्ट किया यह मेरा स्वभाव है परंतु ज्ञान को उसने समझा ही नहीं। मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, ये ज्ञान की चैतन्य की परिणति चल रही है उसका उसने भान ही नहीं किया। राग से साथ मिली हुई है और राग मैं ही हूँ इतना मान लिया। उसी पर्याय में ज्ञान की चैतन्य की बात है उसको उसने स्वीकारा नहीं। द्रव्य गुण और कारण शुद्ध पर्याय अभेद रूप है इसे ही कारण परमात्मा कहते हैं। ये जो शुद्ध एक सदृश परिणति ना द्रव्य गुण की रहने रूप, क्योंकि परिणति तो चल रही है कि नहीं हर समय, तो परिणति होना उसने ले लिया उसने और उसमें जो विसदृशता है उसको हमने अलग निकाला समझने के लिए। तो ये द्रव्य गुण और उसकी एक सदृश परिणति इसको सबको कारण शुद्ध पर्याय कह दिया, कारण परमात्मा कह दिया। वर्तमान पर्याय जब कारण परमात्मा के साथ अभेद हो जाती है उसका आश्रय लेती है तब शुद्ध कार्य प्रकट होता है, कारण ख्याल में आता है। कारण है किसको, तो सबको है परंतु वो कारण कब कहेंगे, जब कार्य होगा तब। हमने सुबह देखा था कि हमारे पास हमारे घर में हमारे पूर्वजों ने बहुत सारा धन वो नीचे जमीन के अंदर गाड़ा है, हमें उसका पता नहीं है ये कितनी अब्जों की संपत्ति है परंतु यहाँ कैसी परिस्थिति हुई है, अभी खाने के लाले पड़ गए। अरे उसकी इतनी संपत्ति है कि नहीं है, उसके पास है कि नहीं, उसका वो मालिक है कि नहीं है, तो कहते है कि नहीं के बराबर है क्योंकि उसको उसका पता नहीं है। ऐसे ही जब तक शुद्ध कारण ज्ञात नहीं था तब तक शुद्ध कार्य भी प्रकट नहीं हो रहा था। शुद्ध कार्य कब प्रकट होगा, उस कारण का भान हो जाए उसका ज्ञान हो जाए उसको एक्सेप्ट करेंगे तब, क्योंकि अगर एक्सेप्ट हो जाए तो उसकी तरफ बिल्कुल जी उसी में एकराग होकर रहेगा तो उसका शुद्ध कार्य भी प्रकट हो जाएगा।
जब ये कारण ख्याल
याद नहीं आता पहली बार, वही सम्यक दर्शन,
वही सम्यक दर्शन, क्योंकि हमने उसको एक्सेप्ट किया तो अरे ये मेरा पूरे परिपूर्ण मेरे में ही, हमें मुझे कहीं किसी की जरूरत ही नहीं, कहीं कहीं जाना ही नहीं है, कोई अन्य मेरा कुछ कर ही नहीं सकता है। अभी तक क्या था, यहाँ से मिलेगा, वहाँ से मिलेगा, वहाँ से मिलेगा, इसकी महत्ता, उसकी महत्ता, उसकी महत्ता आती थी। अब सब कुछ अपने में है, ये ख्याल में आ गया। हाँ, जब अपने में स्थिर नहीं होता तो जिन भगवान के द्वारा ये मार्ग मिला है उनकी भक्ति जरूर होगी, उनके विनय होगा, गुरु का विनय होगा, परंतु मात्र बाह्य में विनय कर रहा है और उसको ये पता ही नहीं है, कुछ उसने सुना ही नहीं है, तो उसका वो करना नहीं करना वो खुलासा रह जाता है, क्योंकि हमारे माता पिता करते हैं इसलिए हम कर रहे हैं। देखो, हम मोक्ष मार्ग को मोक्ष का कारण कहते हैं, क्या ये सही है? कहते तो है, हम कथन है शास्त्र का, मोक्ष मार्ग मोक्ष का कारण है, इसमें क्या भूल हो गई? उपचार है भले, परंतु उसका हम नियम यानी सच्चा कारण मानेंगे तो क्या भूल हो जाएगी? एक पर्याय को दूसरे पर्याय का कारण मानना पड़ेगा। मोक्ष मार्ग भी पर्याय है और मोक्ष भी पर्याय है। मोक्ष मार्ग का व्यय होकर मोक्ष प्रकट होता है और पर्याय में से पर्याय उत्पन्न नहीं होती, द्रव्य में से होती। भाई हम तो ऐसा पहले सीखे कि मोक्ष मार्ग स्वयं अपने उपाधि षटकार से उत्पन्न होंगे, मोक्ष भी होगा, परंतु मोक्ष मार्ग से मोक्ष हुआ ये कहना कैसा है? उपचार का कथन, पूर्व पर्याय का ज्ञान कर, हाँ शुद्ध है, हाँ, क्योंकि वो पूर्व पर्याय है, पर्याय में से पर्याय नहीं होती, क्योंकि जो पर्याय स्वयं मिटने वाली है वो मिटने वाली दूसरे को जन्म कैसे देगी? तो कहते वो द्रव्य उसका कारण, तो ये व्यवहार कथन है। सम्यक्त्व से लेकर केवल ज्ञान तक के सभी शुद्ध कार्यों का मूल कारण यह परम पारिणामिक भाव में स्थित कारण शुद्ध पर्याय है। क्यों? उसके लक्ष्य से, उसके आश्रय से शुद्ध पर्याय प्रकटति है, यानी हमने अपने कारण शुद्ध पर्याय का आश्रय लिया, यानी उसका लक्ष्य किया, उसी में हम स्थिर हो गए, तो उसको जानते जानते शुद्ध पर्याय प्रकट हुई, जानते ही रहे तो शुद्ध पर्याय प्रकट हुई, जानते ही रहे तो शुद्ध पर्याय, तो शुद्ध पर्याय शुद्ध पर्याय शुद्ध पर्याय हमारा कार्य चल रहा है। और बिल्कुल अंदर जम गए तो वो तो शुद्ध पर्याय पहले मोक्ष मार्ग रूप थी, अब जो शुद्ध पर्याय होगी वो मोक्ष रूप होगी। तो ये द्रव्य में से उत्पन्न हुई, पर्याय में से पर्याय नहीं उत्पन्न हुई। कारण शुद्ध पर्याय रूप कारण तो अनादि अनंत विद्यमान है। क्या कहा? ये कारण शुद्ध पर्याय सबके पास है कि नहीं है? तो बिल्कुल है, द्रव्य गुण है और वो एक सदृश परिणति हर समय चल रही है, तो अनादि से है, अनंत काल तक रहेगा, परंतु शुद्ध पर्याय रूप कार्य तभी प्रकटता है जब इस कारण के अनुसार परिणति होती है, यानी वो जो कारण को हम एक्सेप्ट करते हैं, यानी पर्याय ने इस कारण को अभेद रूप से स्वीकार किया, पर्याय उसी को जानने में लीन हो गई, वो उसके साथ तन्मय हो गई, तो हम क्या कहेंगे? तो उस कारण का आश्रय लिया जाता है, अन्यथा वह कारण विद्यमान होने पर भी नहीं के बराबर है। इसलिए कारण और कार्य की इतनी विस्तार से चर्चा क्यों चल रही है हमारे? क्योंकि हमने कितने ही सिद्धांत तो देखे इसके बारे में, इतने टाइप के उपादान देखे, निमित्त को अलग से देख लिया है, समवाय के रूप में इसको देख लिया है, इतनी सारी आत्मा की शक्तियां देख ली है, तो ये कारणों की चर्चा क्यों? हमने पहले भी एक बार देखा था, अब तक अनादि से इस जीव की कारण विपरीतता चल रही थी, ज्ञान में मिथ्यापना क्या चल रहा है, द्रव्य के स्वरूप के बारे में उसके विपरीतता चल रही है, विपरीत ज्ञान चल रहा है, उसको कहेंगे स्वरूप विपरीतता। ये कारण संबंधी उसके निर्णय नहीं है, परद्रव्यों से मेरा कार्य होता है मानता है और वैसा ही जान रहा है, तो उसको कहेंगे कारण विपरीतता। और भेदाभेद विपरीतता, परद्रव्य के साथ अभेद मान रहा है अपने को, तो ये भेद और अभेद संबंधी उसका ज्ञान, जो कुछ उसका संशय विपरीत पना चल रहा है, वो भेदाभेद विपरीतता। जब तक ये है ज्ञान में, तब तक उसका अज्ञान यानी मिथ्या ज्ञान चल रहा है। जब हम सही जानते हैं और वैसा हम स्वयं निर्णय करेंगे तो हम कहेंगे वहाँ सही ज्ञान हुआ। सही ज्ञान के साथ अब कारण संबंधी सब ज्ञान सही हो गया, तभी अपने को जानने में लीन हो गया, तब उसको आत्मा की अनुभूति हो जाती है। शास्त्र में कहा है कारणानुविधायिनी कार्याणी, अर्थात अनुविधायिनी कारण के अनुसार कार्य होता है। तुम भी अच्छी तरह से इस बात को ध्यान में रखो कि मात्र कारण कार्य की चर्चा करने से, शास्त्र में से तत्व ज्ञान पढ़ने से, कंठस्थ करने से या पढ़ने या पढ़ाने से कुछ शुद्ध पर्याय रूप कार्य प्रकट होने वाला नहीं है। तो क्या हमारा सारा बेकार गया? क्या कहा? मात्र शब्द लगाया था, मात्र मात्र करने से कुछ नहीं होगा, मात्र शब्द लगाया ना, यानी केवल सिर्फ हमने पढ़ा या इसको पढ़ाया, तो कहते उससे कुछ नहीं होने वाला। उसके लिए स्व सन्मुखता करके कारण परमात्मा को, उसी का दूसरा नाम क्या है, कारण शुद्ध पर्याय को अभेद पने से जानना होगा, उसी में लीन होकर उसको जानना होगा। शुरुआत में इन कारणों की पहचान नहीं थी, इसलिए इतनी सारी चर्चा आवश्यक थी। चर्चा प्राथमिक भूमिका में आवश्यक तो थी, परंतु केवल चर्चा में संतोष मत मानना। देखो ये सिद्धांत पढ़ते तो हमने ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा, उसने, तो चर्चा चर्चा में ही चलता रहता है। अंतर्मुख होकर निज कारण परमात्मा को जानो, ये जानो इन्वर्टेड में लिखा है, उसको जानना आवश्यक है। उसकी मात्र है करके वो चर्चा करना, नहीं नहीं हमने बराबर मान लिया, वो होता ही है, सबका अपना होता है, कहने से कुछ नहीं होगा, उसको जानने से कार्य होगा। अब इसके आगे ये इन्हीं जो हमने कारण और कार्य संबंधी जो सिद्धांत पढ़े हैं, ये सारा पढ़कर ये क्रमबद्ध पर्याय, यहाँ भी पर्याय शब्द लिखा है। हाँ अच्छा,
ये बात ये क्रमबद्ध खत्म ही करें,
नहीं उसमें तो क्रमबद्ध पर्याय समझाऊंगी, ये बताएं।
हाँ ऐसा, ये बात तो
यही समाप्त होती है। देखो यहाँ क्या लिखा है, यह कारण कार्य व्यवस्था समझना प्रारंभ करने से पहले मैंने पत्रांक 3 में तुम्हें आश्वासन दिया था कि मैं तुम्हें क्रमबद्ध पर्याय का सिद्धांत समझाऊंगी। तुम भी बड़ी जिज्ञासा के साथ यह विषय समझने के लिए आतुर हो, इस बात का मुझे पता है। हमने अभी तक जितने सिद्धांत पढ़े हैं, उनके आधार से तुम्हें इस क्रमबद्ध पर्याय समझाना अब मेरे लिए आसान हुआ है। ये क्रमबद्ध पर्याय भी किसी पर्याय का नाम नहीं है, सभी पर्याय द्रव्य में जो है वो निश्चित नियत जो होने वाली वही होती है, और जिस क्रम से होने वाली है उसी क्रम से होती है, उसका पूरा अनादि अनंत क्रम निश्चित है। ये द्रव्य में ही ये व्यवस्था पड़ी है, तो ये पूरी जो व्यवस्था है उसको कारण, सॉरी ये क्रमबद्ध पर्याय कहा है, इसकी चर्चा तो आगे की है।
हाँ
हाँ, अंतर्मुख अंतर है अंदर की ओर, अंदर है हम तो आत्मा ही है, स्व की ओर, क्योंकि अपना उपयोग अभी तक कहाँ है, बहिर्मुख। बहिर्मुख यानी उसका मुख किस तरफ है, पर की तरफ। अब ज्ञान पर की तरफ लगा हुआ है, अंतर्मुख करना है अपनी ओर लगाना है, अपने को ही जानते रहना है, अपने स्व सन्मुख करना है। स्व सन्मुख कहो, अंतर्मुख कहो, और वो केवल उसके विकल्प उठाने की बात नहीं है। हाँ विकल्प उठेंगे, उसके निषेध नहीं है, परंतु विकल्प करते रहने से आत्मा का अनुभव नहीं होगा। कि ध्यान पर भी, ध्यान के नाम पर भी क्या चलता है, मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं वैसा हूँ, तो कहते ये भी विकल्प है, ये जल्प कहेंगे। भले हमने मुंह से बोला नहीं, परंतु अंतरंग में भी वो भाषात्मक विचार चल रहे हैं, तब उसको स्थिर शब्द होकर अपने को जानने की कोशिश करो तो वो अंतर्मुखता है। क्योंकि ये निर्णय हमने ज्ञान में कर लिया है, अभी ज्ञान में सबको ले लिया है, अब क्या रह गया, बस उसको जानते रहने रह गया, उसको कहेंगे अंतर्मुख, उसी को कहेंगे स्व सन्मुखता। और उसी हालत में ये उसके भी कोशिश करने की जरूरत नहीं, वो तो सहज है। जीव का उपाय या जीव का पुरुषार्थ क्या है, तत्व निर्णय करके तत्व विचार में अपने उपयोग को ऐसा लगा दो कि वो उपयोग स्वयं ही वो अपने को पकड़ लेता है, जरूरी क्या है तत्व निर्णय के, ये तत्व निर्णय के लिए जो हमने सारे सिद्धांत पढ़े हैं, उसका अपने बुद्धि से एक्सेप्टेंस होना चाहिए, तब जाके तत्व निर्णय हो जाता है। हम यही रुकेंगे अभी। तो ये सारे हमने कारण कार्य संबंधी बहुत सारे सिद्धांत पढ़े हैं। अब आगे आप क्रमबद्ध पर्याय का भी स्वरूप ये सारे पढ़कर, हाँ उसकी बात आप पढ़ लेना। अभी तो यही हम रुकेंगे। बोलो चोरी सो भगवान की।